8105, वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू, 1 लिख लीजिए, मत हो जाओ उन लोगों की तरह जो तफरकों में पड़ गए, वख्तलफू और इख्तलाफ में पड़ गए, मिन बादी मा जाकुमुल बय्यिनात, इसके बाद क्या आ गई तुम्हारे पास रोशन दलीलें, यानी उन लोगों जैसे ना हो जाओ कि जिनके पास रोशन दलीलें आ भी गईं फिर भी तफरकों में पड़ गए और इख्तलाफ किए, वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये किसकी बात है? ये वला तकूनो कल्लज़ीना से कौन लोग मुराद हैं? तो टेक्स्ट को देख लें तो यहूद और नसारा, अल्लाह ने उनको भी अपने वक्त में सब कुछ दिया था लेकिन नहीं माना उन्होंने, तो फर्कों में पड़े। कभी अल्लाह किसी जाहिल कौम को नहीं पकड़ता, याद रखिए, रसूल ना आया हो, दीन सिखाने वाला ना आया और अल्लाह पकड़ नहीं करता, लेकिन मिम्बा दिमा जाहुल बैजिनात, इल्म आ गया, रोशन दलीलें आ गई, फिर लोग नहीं मानते तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। यहूद और नसारा के जो तख्ते उल्टे, वो क्यों उल्टे? उन्होंने भी वही किया जो आज हम मुसलमान कर रहे हैं, फर्क बस इतना ही है कि मुसलमानों के बाद अब कोई उम्मत नहीं आनी, इसी के अंदर ही बस अरूज और जवाल हम देखते रहेंगे और हमें दिखते रहेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उन जैसे काम ना करो। क्या किया था उन्होंने? इख्तलाफात और फिरके क्या थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद के 71, 71, नसारा के 72 यानी 72, और मुस्लिम्स तुम्हारे 73 फिरके होंगे, सेक्ट्स, यानी क्यामत के करीब मुसलमानों के 73 सेक्ट्स हो जाएंगे, और ख्वाहिशाते नफसानी और खुशफहमियों में मुबतला होंगे, जिस तरह कुत्ते के काटे हुए इंसान की एक-एक रग और जोड़ में उस जहर का असर पहुंच जाता है, इस तरह मेरी उम्मत में ख्वाहिशात लौट रही होंगी। ये खुलासा है मुस्नद अहमद की रिवायत का। क्या सच है कि झूठ? ख्वाहिशें हैं आज की नहीं हमारी? जैसे कुत्ता काटता है ना, तो बंदे को शायद बंदा भी कुत्ता ही बन जाता है भौंकने लगे, ख्वाहिश बंदे को इस तरह अंधा बहरा कर देती है कि उसको लगता है कि बस इसमें कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो सब ऐसे हो गए, आज मुसलमानों तुम्हारा भी यही हाल हो गया। अल्लाह ताला ऐसी कौमों को फिर दुनिया में रहने भी नहीं देता कि जिनके अंदर खराबियां आ जाती हैं। आप देखिए कि मुसलमान इतने उरूज पे थे, फिर उनको जिंदा जलाया गया, क्यों? क्योंकि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अजाब है। बगदाद में जवाल क्यों आया? मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ के देखें, इसलिए कि उनके उलमा ऐसी चीजें की बहसों में पड़े थे जिसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं। कैसे? कहते हैं कि जिस वक्त बगदाद में मुसलमानों पे सवाल आया तो उलमा की बहस क्या थी कि क्या बुराक हलाल है कि हराम? आपको तो बुराक क्या है? वो जानवर जिस पे अल्लाह के नबी मेराज के मौके पे गए, आज है? कभी बसा? लेकिन कहते हैं अच्छा, अगर ये होता दुनिया में तो हलाल था कि हराम? भाई तुम्हें क्या, ये है फिक्की झगड़े, इख्तलाफी बातें, इन बातों में पढ़ के हुए। और फिर जो मुसलमानों का खून बहा, अल्लाह अकबर, हलाकू खान ने जो तबाहियां मचाई थी आपने सुनी होंगी, खून की नदियां बह गई, दजला और फरात में किताबें फेंकी गई मुसलमानों की लिखी हुई, और कहते हैं कई दिन तक वहां का पानी स्याह हो रहा उस इंक की वजह से, क्योंकि ये पढ़ते जो नहीं थे। स्पेन में मुसलमानों की लाइब्रेरियां जिनमें मुसलमानों के हाथों की लिखी हुई किताबें थी, लेकिन दुश्मन जब आया उसने उन्हीं किताबों को आग लगाई और उसमें मुसलमानों को जिंदा जला दिया, क्योंकि अगर वो अमर बिल मारूफ करते, नहीं निल मुनकर करते, तो दुश्मन कभी भी उनके साथ ऐसा ना करते। कल की मिसाल ले लें, बोस्निया में क्या हुआ, मस्जिदें क्यों शहीद हुई? आज शोर मचाते हैं, चीखते हैं, उस मुल्क फलां मुल्क फलां मुल्क, अल्लाह क्यों करता है? कभी आप अखबारों में, टीवी पे, झलकियों में देखा करें, लुटे पुटे काफले जो आते हैं ना मुसलमानों के, उनके कपड़े, उनके हाल हुलिये गैर मुस्लिमों वाले होते हैं। मैंने कई मुल्कों की इर्द गिर्द की कहानियां जब पढ़ी, जो लोग वहां जाते हैं और वो देखते हैं। हमारी अपनी एक साथी थी, तो वो कोर्स के दौरान थी, तो उन दिनों में बोस्निया की जंग भी थी, तो उनके मियाँ की ट्रांसफर हो गई, तो बड़ी दुखी थी कि मैं क्या करूंगी, जाके मेरा कोर्स बीच में है। तो खैर किस्सा मुखसिर के वो गई और उनको कहा कि तुम्हें जो आता है वो सिखाओ, और उसने आके जो बात बताई कि कैन यू बिलीव कि आम लोग जो वहां हैं उनको सही तरीके से कलमा पढ़ना भी नहीं आता, سورت فاتحہ بھی نہیں آتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا, یہ یاد رکھیے. یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ جب وہ اپنی کتاب اور اپنے دین کو چھوڑ کے مقصد حیات سے پیچھے ہوئے. اللہ کہتا ہے تم نے میری کتاب چھوڑی, میرا دین چھوڑا, میں تمہارا نام بھی نہیں پھر رہنے دوں گا دنیا میں. اتفاقاً مسلم جس ایسے ایک بچی تھی آذربائیجان سے پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی پاکستان میں, پھر اس نے اپنی کہانیاں سنائی. یعنی آپ سوچئے کہ جس کو اردو زبان آتی نہیں ہے, کسی حادثاتی طور پہ وہ پاکستان آ گئی اور اللہ نے اس کا بھلا چاہا تھا, وہ کسی جگہ قرآن کی کورس میں پہنچ گئی. کہتی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوا قرآن, الف با تا سا کوئی نہیں آتی ہمارے ملکوں میں کسی کو. پھر اس نے اردو سیکھی, پھر اردو انگلش مکس کر کرا کے اس نے وقت لگایا اور ماشاء اللہ تہجد گزار, اور بعد میں جا کے وہ خود وہاں پہ دین لوگوں کو سکھانے والی بن گئی. وہ کہتی ہے میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں آ کے عربی قرآن دیکھا. اللہ ظلم نہیں کرتا. نماز کی اجازت نہیں تھی ان ملکوں میں مسلمانوں کو. آج میرے سے نام لے کے پوچھ لیجئے, ہمارے اپنے مسلمان ملک ہے ہمارے قرب و جوار کے, وہاں پبلک پلیسز پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آڈینس کو. اسکرٹ کے اندر جب ٹانگیں ننگی نہ, ان کو جابس نہیں ملتی. تو پھر اللہ ایسے مسلمانوں کو کیا کرے؟ جو اللہ کو غصہ نہیں آتا غیر مسلم پہ, وہ تو اللہ کا ہے ہی نہیں. کبھی آپ کو غیروں کے بچوں پہ غصہ آیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں, تو نہ سے بھاڑ میں جائے. اپنے بچے پہ خون کیوں جلتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے وجود کا حصہ ہے. آپ کا دل نہیں کھلتا کہ ان کو آگ کھا جائے گی, یہ میری نہیں سنتے, تو اللہ کے بھی تو مسلمان ہی ہے. کافر تو پھر پہلے ہی کہتے ہیں میں کسی کا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ پلٹے تو میں نے ان کے چہرے پٹلٹ کے رکھ دیے. اس لیے اگر میں اور آپ اس وقت اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو انشاءاللہ ہمیں کردار ادا کرنا ہے. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت فارسی کی پوئم میں اس میں کہا کہ ز شام ماں بروئے آور سحر را, با قرآن باس ہوا اہل نظر را. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری شام ہو گئی, یعنی اس وقت امت کی شام ہوئی ہوئی ہے. تم سحر پیدا کرو, اہل نظر کو قرآن پڑھاؤ, تمی دانی کے سوزے قرآن تو نے دگر دوں کر تقدیر عمر را. کہتے ہیں کہ عورت تم جانتی ہو کہ تیرے قرآن کے سوز نے عمر کے دل کی حالت بدل دی تھی. عمر کی بہن کو اشارہ کرتے ہیں کہ عمر بھی تو نبی کے قتل کی ارادے سے آئے تھے نا, تو تیرے بہن کے یعنی فاطمہ نام تھا ان کی بہن کا, ان کا قرآن سن کے رک گئے. تو کہتے ہیں آج امت مسلمہ کی ماں اٹھ اور اپنا کردار ادا کر اور عمر پیدا کر. اس دور میں ہر ماں ایک ماں نہیں ہوتی تھی, ایک مولمہ ہوتی تھی, استاد ہوتی تھی. آج ہم اپنے بچوں کو ہیرے کی کنیاں سمجھ کے پالتے ہیں, شیشے کے, فریجل, بہت نازک ہیں یہ, ان کا دل نہ ٹوٹ جائے, ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. اس دن کیا ہوگا جس دن ہمارے بچوں کو اللہ نہ کرے دنیا میں آگ لگے. دیکھیں جن ملکوں میں آج مسلمان مر رہے ہیں, خبریں تو آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی تو مائیں تھیں. ہم دوسروں کی نہیں دیکھ سکتے تصویریں. آپ سوچیں جن ملکوں پہ حملے براہ راست ہونے لگ جاتے ہیں, وہاں ماں اور باپ کا کیا بنتا ہوگا. سکولوں میں آ کے گولیاں چلتی ہیں, صرف ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑے. ہم صرف ایڈ بھیج کے بڑے خوش ہیں کہ چلو ہم نے اپنے گھر کا گند نکال دیا. لیکن سوچیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم جن مسلمان ملکوں میں یا جن جگہوں پہ ہمارے بچوں کی عزتوں پہ کوئی ہاتھ اٹھائے, اور واللہ ہی یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے اگر ہم نہ اٹھے. اس وقت اگر ایک عورت کو آپ تیار کرتے ہیں نا, یہ جو دین کے مدرسے بن رہے ہیں یہ اس پوری انسانیت پہ احسان ہے. ایک بچی دین سیکھ کے نکلتی ہے اور پڑھتی ہے, ایک امت سنور جاتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ پوری امت کی ماں بنتی ہے. تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا, یہ لوگوں کے جملے ہیں. تو امت کب سنورے گی؟ جب عورت سنورے گی. اور اگر عورت کی پرائیورٹی صرف اپنی نوک پلک سجانا اور میں کیسی لگتی ہوں, میں کیسی لگوں گی, میں سارا دن بھی پارلر میں بیٹھ کے آپ کے سامنے آ جاؤں تو آپ کو کیا دوں گی, میں کتنی کو حسین لگوں گی؟ سچ بتائیں جو میری شکل ہے وہی رہے گی. لیکن آج کی عورت کو ذرا دیکھیں تو صحیح, ایک ایک بال کی قیمت وہ دے دیتی ہے پاؤنڈس میں, ہزاروں میں دے دے گی شوق کے لیے. ہمیں درد نہیں ہے اس وقت, یہ نہ کہیں کہ ہم پیسے نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے. میرا جو اس وقت دل میں تڑپ ہے نا, وہ یہ کہ درد نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا, کسی میت کی خبر سنیں پاکستان میں تو دل خوش ہوتا ہے. ادھر 3 دن تک تو اثر رہتا ہے نا, होता कि नहीं, करीब जितना कोई होगा उतना दुख होगा। तो मुसलमान कितने हजारों कटते मरते हैं रोज, खबरों में हम सुनते हैं बस एक लम्हे के लिए, अगले बाद फिर लोग कम कहते हैं, दूसरे चैनल पे देखें क्या हो रहा है। दर्द नहीं है, हम इस वक्त एक फैमिली नहीं है, हम नबी की उम्मत नहीं दिखते, क्योंकि आज हमारे अपने गोल्स हैं। हमारा ये गोल तो था ही नहीं कि वल तक मिनकुम उम्मतन यदउन इलल खैर, इसलिए वो कहते हैं ना कि इस कौम के दिल से एहसास जिया जाता रहा। एक बिजनेस मैन है, अगर उसका लॉस चल रहा है ना, वो उस लॉस में से निकल आएगा इंशाल्लाह, लेकिन जिसको पता ही नहीं कि मेरा बिजनेस लॉस पे जा रहा है, वो खुश है, हाथ में आ रहा है पैसा, लेकिन अंदर से खोखली हो गई सारी इंडस्ट्री। ये हाल है आज हम लोगों का। मुझे तो नहीं लगता कि हमें खुश होने का हक है कि हम अपनी खुशियों के लिए लाखों करोड़ों को आग लगा दें। करोड़ों को आग लगाते हैं हम सिर्फ एक खुशी की भेंट, और खुश फिर हो जाएं तो बड़ी बात है। खुश कब होंगे, अब अल्लाह इसकी बात आपको बताते हैं। आयत 106, यौम तबयद्दु वुजूहुन, जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, वतस्वद्दु वुजूहुन, और कुछ चेहरे स्याह होंगे। क़यामत का मंजर ज़हन में लाइए, सफेद और स्याह चेहरे। फअम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम, बस वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे, काले चेहरे वाले लोग, रू स्याह, उनसे कहा जाएगा अकफर तुम बाद ईमानिकुम। इसको हाईलाइट करें, ये फरिश्तों का जुमला है। ये वो ताना है जो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा को क्यामत के दिन फरिश्तों के मुंह से सुनना पड़ेगा, खुदा न खास्ता अगर उन्होंने वल तक मिनकुम उम्मतों इनका हक ना अदा किया। अकफर तुम बाद ईमानिकुम, क्या तुमने कुफर किया है ईमान के बाद? इतने ना शुक्रे थे, तुम्हें थाली में रखा हुआ ईमान मिल गया था ना उम्मत मोहम्मदिया के, तुम फर्द बन गए थे, इसलिए चलो कोई बात नहीं। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस चखो तुम उस अज़ाब को जो तुम ना शुक्री करते थे। और वम्मल्लज़ीना इब्यद्दत वुजूहुहुम, और वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे, फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये हैं दो मुख्तलिफ अंजाम। आज दुनिया में भी आप देखिए तो मुसलमान दो ही किस्म के हैं, एक मकसद के साथ जीने वाले, ये तीन काम करने और उसकी हत्तुल बसा कोशिश करने वाले, और दूसरे इससे ऑपोजिट, सिर्फ अपनी जात के लिए जीने वाले। क्यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, बताओ क्या करते हो, अब ये कौन है और कौन नहीं? मैं क्या कहूँ, आप आयमा कराम और मुफस्सरीन की ही बातों को सुन ले कि सफेद चेहरे वालों से यहाँ कौन मुराद है और स्याह चेहरे वालों से। तो बेहतरीन तफसीर इब्न अब्बास की तफसीर है, कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले बिदत और इफ्तराक मुराद है, यानी सुन्नतों पे अमल करने वाले, अल्लाह के नबी के तरीकों पे चलने वाले और इस मकसद को पूरा करने वाले, क्यामत के दिन इनके चेहरे रोशन होंगे। और जिन्होंने दुनिया में बिदात फैलाई, जिन्होंने दुनिया में नाफरमानियां की, कल क्यामत के दिन वो उनके चेहरे स्याह होंगे। आप देखिए कि यहाँ आप चेहरे की सफेदी और स्याही, इसको अपने जहन में रख के सोच लें, दुनिया में किसी का काला होना क्या अल्लाह के अजाब की निशानी है? नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में ये रंग अल्लाह की देन है। काले बिलाल हबशी को काबे की छत पे अजान देने की ऑनर मिली, और अबू लाहब जिसकी सुर्ख गालें थी, शोलों का बाप उसका टाइटल था, नाम तो उसका ये नहीं था, अब्दुल बुद्ध नाम था उसका, बुद्ध का बेटा, लेकिन चेहरा इतना खूबसूरत था कि सुर्ख रंग छलकता था, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं तब जदा बी लहब वतब। तो दुनिया में गोरा या काला होना खुशी या बदबख्ती नहीं है, लेकिन क्यामत के दिन आसार चिखेंगे। जिन लोगों ने जिंदगी में अपने हिस्से का काम किया, जले कूड़े मेहनत की, कोशिश की, कुछ चेंज आई कि ना आई, क्यामत के दिन वो सुर्ख रू होंगे। उर्दू में आपने ये लफ्ज सुना भाई, सुर्ख रू होना, क्या मतलब है? कोशिश की, चलो भाई मैं सुर्ख रू हो गया। यहाँ वो लोग जो आज के इस फितनों और इख्तलाफात के दौर में कुरान और सुन्नत की तरवीज के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहां खुश होंगे कि हमने जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की, इत्मीनान है, चैन है। आप देखें कोई सारा दिन काम करता रहे, अंग अंग दुखेगा, लेकिन जब आप साफ घर देखते हैं, खाना पका देखते हैं, तो खुशी होती है ना, मेहमान भी खुश, घर वाले भी खुश। तो वो थकन जो काम करने के बाद होती है वो खूबसूरत होती है, और सारा दिन किस्मत के मारे आप बिस्तर में लेटे रहे, चाय के चार कप आपके पास जमा हो गए और अखबारें, रिसाले, मैगजीन और चैनल घुमाते रहे। शाम को जब पता चला कि मेहमान भी आ रहे हैं और घर भी गंदा है, तो फिर वो जो स्ट्रेस है ना, वो है चेहरे की स्याही। आज दुनिया में अल्लाह के दीन का गम लगा लें, होता रंग काला तो फिर हो, नहीं आप कर सकते फेशियल, नहीं करा सकते तो नहीं तो ना से। क्या करना है, पूजना है खुद को, कोई बोतल सजाना है, कहीं बेचना है खुद को जो इतना सजाए। काम करो, मेहनत करो, नहीं अपना ख्याल रख सकते कोई बात नहीं, कयामत के दिन चेहरे सफेद होंगे। और जो दुनिया में अपने आप को चमकाते रहे, कयामत के दिन क्या होगा, तर हकुहा कतरा। आप पढ़ेंगे तीसवें पारे में आता है कि उनके चेहरों पे गुबार होगा बदामालियों की वजह से। गालिबन सूरत रात इब्राहिम की आयतों में एक आता है कि ऐसे लोगों के कयामत के दिन चेहरे काले रात की तरह होंगे, जैसे तवा होता है ना काला, इतने काले होंगे लोग, गम की वजह से तकलीफ होगी उनको। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैक, ये अल्लाह की आयतें जो हम आप पर पढ़ते हैं, बिल हक की हक के साथ, ये सच्ची बातें हैं। कोई इसमें फैंटेसी दिखी है आपको आज के सबक में? कोई इसमें आपको पंप एंड शो, ग्लैमर, मजा आ रहा है, सो इंजॉय, लाइची, पान, छालिया, खुशबुएं, अगरबत्तियां? यहाँ तो यही कुरान मिलेगा आपको, जलने जलाने वाला। यहाँ तो आप कम ही हंसते हुए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का कुरान है ना। और अगर सिर्फ फजीलतें और रवायतें हैं तो उसके लिए तो बहुत आसान मौके हैं। तो अल्लाह कहता है कि ये अल्लाह की आयतें हक वाली हैं, सच है। वमल्लाहु युरीदु, और अल्लाह का इरादा नहीं, जुल्म लिल आलमीन, जहान वालों पर जुल्म का। अल्लाह सुभान तआला जहान पे जुल्म नहीं करता, उसको पता है कि मेरे बंदे कमजोर हैं। अल्लाह ने अगर रूस में मुश्किलात रखी तो जुल्म नहीं था। आपको पता है कि अगर आप रूस की तारीख पढ़ के देखें तो सेंट्रल एशियन रियासतों में समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये मुसलमानों के इलाके थे, यहाँ मदरसे थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, इस्लाम का बोलबाला था बजाहर। लेकिन जब दुश्मन आया, हजारों की तादाद में उलमा के सर काटे और उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए गए, मदरसे बंद करवा के म्यूजियम बना दिए गए, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, कुरान का पढ़ना पढ़ाना बंद, अजान खत्म। क्यों हुआ? इसलिए, क्या कफर तुम बाद ईमानी को, ईमान क्या था, अल्लाह ने दे दिया इस्लाम तो कदर नहीं की। बगदाद में इस्लाम का बोलबाला था, हलाकुहा ने आकर ईंट से ईंट बजा दी। क्यों? क्योंकि जब कौमें नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेती हैं तो फिर यही हालात होते हैं। आखिरी आयतों में अल्लाह ताला कहते हैं, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ सारे कामों को लौटाया जाता है। इस आयत को पढ़ के दिल ठंडा हो जाता है, क्योंकि बहुत बोझल सबक था। दिल दुखता है कि क्यों अल्लाह के रास्तों में नहीं आते, क्यों मुश्किल लगता है, क्यों नहीं तुम्हें पसंद, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला उसका जवाब इधर हमें दे रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी जात है, वो चाहे तो फरिश्तों को भेज के दुनिया में अपने दीन का बोलबाला कर ले, लेकिन ऐ मुसलमानों, उसने तुमको फायदा देकर तुम्हें एक चांस दिया है, अवेल इट, इसको अवेल कर लोगे फिर देखना तुम्हें कल कितनी खुशी मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा। और अगर तुम नहीं लेते, तुम्हारी अपनी मर्जी, अल्लाह सुबहाना ताला ने तो तुम्हारे लिए हर चीज को तैयार करके रखा हुआ है। तो आप देखिए कि जब हम इन चीजों पे गौर व फिक्र करते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन जब इन चीजों को बस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो बस फिर वो ऐसे ही होने लग जाता है। इसलिए इन आयतों को पढ़ते वक्त हम सबको अच्छी बातों की नीयत करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमने हक अदा कर दिया, या हमें बस मुसलमान होकर जो भी मिलना था मिल गया और जो बिगड़ना था बिगड़ गया। नहीं, अल्लाह कहते हैं वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, तुमने आना है। और फिर इसके बाद आखिर में वही बात दोहरा दी कि कोई बात नहीं, तुमने अगर अपना काम कर लिया, अपनी नीयत जो तुम्हारी थी, इरादे थे, कोशिशें कर ली, तो कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम हो वो बेहतरीन गिरोह जो लोगों के लिए निकाला गया। तामरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम मारूफ का हुक्म देते हो और मुनकर से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। वलो आमना अहलुल किताब, और अगर ईमान लाते अहले किताब, लकान खैरल्लहुम, تو البتہ ہوتا ان کے حق میں بہتر. منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون, کچھ ان میں بھی مومن ہیں لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں. پورا سبق آپ کو ایک ہی سٹریچ میں لگا, آخر میں ٹائٹل ملا کہ کن تم. بعض کہتے کن تم سے کیا مراد ہے, ہو تم؟ بعض کہتے نہیں, کن تم تھے تم. آپ کہتے کہ کانا واز کے معنی میں آتا ہے, جیسے انگلش میں نا واز اور از, از کے ہو تم, واز کے تھے تم. کن تم کو اگر ہم اس رنگ میں لے لیں نا کہ تھے تم, تو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام ہے, کل تک تم اچھے تھے جب تم یہ کام کرتے تھے. اور کانا کی ایک خوبی ہے جس کو آپ ماضی استمراری کہتے ہیں اردو میں غالباً, اور انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو جب کن تم کانا اس طرح ہے تو کسی کام کے مسلسل ہونے کے لیے بھی آتا ہے, یعنی اگر تم یہ کام کرتے رہے تو تم بہترین لوگ ہو, اور اگر تم نے بہترین ہونے کا حق ادا کیا تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اس منصب سے نہیں گرا سکتی. کرنا وہی ہے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور تومنون باللہ. آپ دیکھیں پیچھے ترتیب تھوڑی فرق تھی نا, پہلے کیا تھا, یدعون الی الخیر, خیر کی طرف بلاؤ, اور پھر یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر. ادھر یامرون بالمعروف کو تامرون بالمعروف کر دیا گیا, نیکیوں کا حکم, تنہون عن المنکر برائیوں سے روکنا, اور پھر تومنون باللہ. اور امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ کل یہی منصب اہل کتاب کو بھی ملا تھا, لیکن انہوں نے جب اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب کچھ لے لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں بہترین امت بنا دے. آپ سب لکھیے اس وقت, آج کے پورے سبق کے بعد جو آپ فیل کریں وہ لکھ کے پرچیاں دیجیے, سب لکھیں گے اپنے اپنے نام کے ساتھ لکھیے گا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون